तीसरा काडरी राज 1042 से 1222 तक। राजा इलंगदेव ने अपने जीवन काल में ही अपने राज को दो भागों में विभक्त कर दिया था, ताकि राज सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। राज्य के विभाजन का यह कार्य उसने भराड़ नामक पंडित के सुपुर्द किया था, और उसने इसके लिए एक तांत्रिक पद्धति कुंभवर्जोदक का आश्रय लिया था। इलंगदेव को राज्य के विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई, इस विषय में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि राज्य की वास्तविक उत्तराधिकारी उसकी वह पुत्री थी जो 1037 ईस्वी तक महामंत्री के पद पर रही थी। इलंग ने राजा का पद अपनी पत्नी के कारण प्राप्त किया था, जो जावा के राजा श्री धर्मवंश की पुत्री थी। वस्तुतः वही धर्मवंश के राज्य की स्वामिनी थी, और उसके पति होने के कारण ही एलंग को राजा का पद प्राप्त हुआ था। अतः राज सिंहासन की वास्तविक अधिकारी उसके ज्येष्ठ संतान श्री संग्राम विजय धर्म प्रसादो तुंग देवी ही थी, पर उसने साधु जीवन ग्रहण कर लिया था। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि राज सिंहासन के लिए एलंग देव के पुत्रों में संघर्ष हो, और उसे बचाने के लिए ही उसे पंडित भराड़ द्वारा राज्य को दो विभाग करवा दिए थे। इस प्रकार जावा दो राज्यों में विभक्त हो गया, जिनके नाम पंजलू और जंगल थे। जंगल राज का वृतांत प्रायः अज्ञात है। उसके केवल दो अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिसमें से एक 1060 ईस्वी का है। इसमें जंगल राज के राजा रके हलू पूजूराव श्री सम रोसा कर्ण केशन धर्मवंश कृति सिंह जयांत तुंगदेव का उल्लेख है। इस राजा ने भी एलंग की गरुड़ मुद्रा को अपनाया था, और इसके विरुद्धों में धर्मवंश का अंतर्गत होने इस बात का संकेत करता है कि यह धर्मवंश और एलंग का वंशज था। इस जंगल राज की राजधानी कहुरिप्पन थी, और इसमें एलंग के राज्य के पूर्वी प्रदेश अंतर्गत थे। एलंग की राजधानी भी कहुरिप्पन ही थी। जंगल राज के अधिक अभिलेख प्राप्त न होने के कारण शायद यह है कि यह राज्य देर तक अपनी पृथक सत्ता को कायम नहीं रख सका था, और बाद में पंजलू के राज्य में ही सम्मिलित हो गया था। यह भी संभव है कि उसके कतिपय प्रदेशों में किसी अन्य राजकुल ने अपना शासन स्थापित कर लिया हो। एलंग के राज्य की पश्चिमी प्रदेश पंजलू के राज्य के अंतर्गत थी। इसकी राजधानी काडेरी थी, जिसे दाहा भी कहते हैं। आजकल भी इन नगरी को केदरी कहते हैं। इस राज्य के इतिहास की पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। काडरी का पहला राजा श्री जयवर्ष दिग्जय था, जिसके नाम के साथ शास्त्र प्रभु और जय प्रभु उपाधियां प्रयुक्त की गई हैं। जावी भाषा के प्रसिद्ध काव्य कृष्णायन का रचयिता महाकवि त्रिगुण राजा वर्षज्य की राजसभा का अन्यतम रत्न था। अनेक विद्वानों की सम्मति में काडरी का राजा जयवर्ष ही वह वर्ष जय था, जिसके आश्रय में रहते हुए त्रिगुण ने कृष्णायन की रचना की थी। इसी कृष्णायन के आधार पर पन तरन के मंदिर में कृष्ण के चरित्र को रूपावलियों में अंकित किया गया था। कवि मनोगुण ने भी अपने काव्य सुमंत सांतक के अंतिम पद में वर्ष जय का उल्लेख किया है। यद्यपि उसे वहां राजा नहीं कहा गया, पर संभवतः उससे भी काडरी का राजा जयवर्ष ही अभिप्रेत है। राजा जयवर्ष के शासन काल को सुनिश्चित रूप से निर्धारित कर सकना कठिन है, पर 12वीं सदी के प्रारंभ तक भी वही काडरी के राज सिंहासन पर विराजमान था, क्योंकि 1104 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया उसका एक शिलालेख सिरह केतिंग नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। श्री जयवर्ष दिग्जय के बाद कामेश्वर प्रथम काडरी के राज्य का स्वामी बना। उसने 1135 ईस्वी तक काडरी का शासन किया। उपाधियों के साथ उसका पूरा नाम था श्री महाराज रके सिरिकन श्री कामेश्वर सकल भुवन तुष्टिकरण सर्वानिर्वाय वीर्य पराक्रम दिग्विजयो तुंग देव। राजा कामेश्वर के बहुत से अभिलेख उपलब्ध हैं, पर वे दान पत्रों के रूप में हैं, और उन द्वारा किन्हीं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय प्राप्त नहीं होता। कामेश्वर की राजकीय मुद्राओं पर चंडक पाल अंकित है। कवि धर्मय के काव्य समर दहन में राजा कामेश्वर का उल्लेख है और उसकी राजधानी दहन काडरी को जगत की अद्भुत नगरी कहा गया है। साथ ही उसके वंश का संबंध श्री ईशान धर्म सिंदोक ईशान के साथ जोड़ा गया है। कामेश्वर का विवाह जंगल देश के निवासी वज्रदेव की पुत्री श्री किरण के साथ हुआ था। समर दहन काव्य में श्री किरण को जंगल की सर्वश्रेष्ठ महिला बताया गया है, क्योंकि श्री करण के पिता वज्रदेव के साथ राजा विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः यह समझा जाता है कि इस काल में जंगल की पृथक एवं स्वतंत्र राज के रूप में सत्ता नहीं रह गई थी। काडरी के राजा कामेश्वर और उसकी रानी श्री किरण को लेकर जावी भाषा में पंची नामक के कथानक लिखे गए हैं। कामेश्वर के बाद उसका पुत्र जयभम काडरी राज का स्वामी बना। इसी राजा के शासनकाल में कवि सेडह ने भारत युद्ध नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस काव्य में जयभय की बहुत प्रशंसा की गई है। उसे विष्णु का अवतार बताकर यह कहा गया है कि वह संपूर्ण जावा का स्वामी था और कोई भी उसके विरुद्ध सिर उठाने का साहस नहीं कर सकता था। हेम भूपति तक उसके सम्मुख सिर झुकाता था। हेम भूपति से स्वर्ण भूमि के राजा का ग्रहण किया जा सकता है, जिससे कि संभवतः सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप अभिप्रेत है। राजा जय भय ने इन प्रदेशों के साथ युद्ध करके उनके राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया हो, इसका कोई संकेत नहीं मिलता। संभवतः कवि सेडह ने अपने संरक्षक की प्रशस्ति करते हुए ही यह भी लिख दिया है कि स्वर्ण भूमि का राजा भी उसके सम्मुख सिर झुकाता था। इसे ऐतिहासिक तथ्य मान सकना कठिन है। जय भय को केवल कवि सेडह ने ही विष्णु का अवतार नहीं लिखा, उसके दो अभिलेखों में भी उसके उल्लेख है। वहां विरुदों के साथ उसका नाम इस प्रकार आया है। श्री महाराज श्री धर्मेश्वर मधुसूदना वतारा निंदति सुहत सिंह पराक्रम दिग्विजयो तुम देव। कवि सेडह अपने जीवन काल में भारत युद्ध काव्य को समाप्त नहीं कर सका था। उसे पनुलुह नामक कवि द्वारा पूरा किया गया। इस कवि ने दो अन्य काव्य भी लिखे, जिनके नाम हरिवंश और घटोत्कचार श्रय है। हरिवंश में राजा जयभय को श्री धर्मेश्वर दिग्विजय नाम से लिखा गया है और उसके विरोधों के अनुरूप है। श्री महाराज जयभय के उत्तराधिकारियों के अनेक नाम विविध अभिलेखों में विद्यमान हैं, पर उनके पूर्वापर क्रम को सुनिश्चित रूप से निर्धारित कर सकना कठिन है। साथ ही इन राजाओं के संबंध में कोई ऐसी बातें भी इन अभिलेखों से ज्ञात नहीं होती ऐतिहासिक दृष्टि से जिनका महत्व हो, अतः उनके नामों को यहाँ उल्लेखित करना उपयोगी नहीं है। काडरी का अंतिम राजा कृतजय था। 1216 ईस्वी का उसका एक अभिलेख मिला है, जिससे सूचित होता है कि 13वीं सदी के प्रारंभिक भागों में इस राजा का शासन अवश्य विद्यमान था। अभिलेखों के अतिरिक्त नागर कृतागम और परतून सदृश ग्रंथों से भी इस राजा के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। उसके अनुसार इस राजा ने ब्राह्मणों तथा धर्माचार्यों को अपने सम्मुख सिर झुकाने का आदेश दिया था, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए और राजा के सम्मुख सिर झुकाने की अपेक्षा उन्होंने यह उचित समझा कि ये राज को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। काडरी का परित्याग कर वे तुम्पेल चले गए और वहां जाकर उन्होंने अंग्रोक की शरण ली, जो तुम्पेल का शासक था। इसी अंग्रोक द्वारा कृतजय का विनाश कर एक नए राजवंश की स्थापना की गई, जो सिंहासरी वंश के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी लेखक चाओ जुकुगा के विवरण से यह प्रमाणित होता है कि काडरी राज, जिसे चीनी ग्रंथों में शो पो या वयव लिखा गया है, अत्यंत शक्तिशाली था और सिंतो सुंडा के अतिरिक्त जावा के अन्य सब प्रदेश उसके अंतर्गत थे। चाओ जुकुगा ने ऐसे 16 राज्यों का उल्लेख किया है जो काडरी के राजाओं की अधीनता स्वीकार करते थे। इनमें से 5 की स्थिति जावा में थी और शेष 11 की समीपवर्ती द्वीपों में। जुंग यलू जंगल की भी गणना उन 5 राज्यों में की गई है जिनकी स्थिति जावा में थी और जो काडरी के अधीन थे। जो समीपवर्ती द्वीप काडरी के अधीन थे उनमें बाली तिमोर तथा दक्षिण पूर्वी बोर्नियो के नाम उल्लेखनीय है। चौथा सिंहासारी राजवंश 1222 से 1292। काडरी राज के अंतिम राजा कृतजय के दुर्व्यवहार के कारण ब्राह्मणों तथा धर्माचार्यों ने तुम्पेल के जिस शासक अंग्रोक का आश्रय लिया था, उसका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन में वह लूटमार द्वारा गुजारा किया करता था, पर बाद में उसने तुम्पेल के शासक की सेवा में कार्य करना स्वीकार कर लिया। तुम्पेल का प्रदेश पूर्वी जावा में था और काडरी राज के अंतर्गत था। अंग्रोक ने अपने स्वामी की हत्या कर न केवल तुम्पेल का शासन ही अपने हाथों में ले लिया, अपितु वहां के भूतपूर्व शासक की विधवा डेडेस के साथ विवाह संबंध भी स्थापित कर लिया। पर सभी अभी अंग्रोक कडरी की अधीनता स्वीकार करता था। जब राजा क्रिज्य के दुर्व्यवहार से विवश हुए ब्राह्मणों ने उसके शरण ली तो उसने कडीरी के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर क्रिज्य से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में कडीरी की पराजय हुई 1222 ईस्वी और वहां के राजा क्रिज्य ने एक मठ में जाकर शरण ली। इस प्रकार कडरी के राज का अंत हुआ। अब कडरी का राज अंग्रोक के हाथ में आ गया। राजस तथा अमूर्व भूमि नाम के वह राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ और उसी प्रकार एक छत्र रूप से जावा का शासन करने लगा, जैसे कि कडरी के प्रतापी राजा किया करते थे। उसकी राजधानी सिंहासरी नगरी थी, जिसके कारण उसका राज्य भी सिंहासरी राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर अंग्रोक राजस देर तक सिंहासरी राज का शासन नहीं कर सका। रानी डेडस का अपने पहले पति से एक पुत्र था जिसका नाम अमूशपति था। उसने 1227 ईस्वी के लगभग अंग्रोक की हत्या करा दी और स्वयं सिंहासरी की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। 21 साल तक शासन करने के पश्चात 1248 ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी गई और उसके सौतेले भाई पंजी तोहजय ने राजसिंहासन संभाल लिया। अमूशपति की हत्या तोहजय द्वारा ही कराई गई थी, पर तोहजय कुछ मास तक ही राज कर पाया। बाद में उसकी भी वही गति हुई जो उस द्वारा अमूशपति की गई थी। 1248 में तोहजय के स्थान पर श्री जय विष्णु वर्धन सिंहासरी के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजा बनते समय उसने सकल कल नकुल मधुमार्धन कमलेक्षण और स्व पिता महास्थावना भिन्ना श्रंत लोकपालक की उपाधियां ग्रहण की थी, जिसका उल्लेख उसके अभिलेखों में हुआ है। उसके समय की एक घटना ज्ञात है। महीबीत के सामंत शासक लिंगपति ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने में राजा श्री जय विष्णु वर्धन ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। इस राजा की मृत्यु 1268 ईस्वी में हुई। सिंहासरी का यही एक ऐसा राजा था जिसका देहावसान हत्या का षड्यंत्र का परिणाम न होकर स्वाभाविक रूप से हुआ था। अपने जीवन काल में ही श्री जय विष्णुवर्धन ने अपने पुत्र कृतनगर को अपना सहकारी राजा बना दिया था। 1254 और उसके शासनकाल में सक्रिय रूप से हाथ बटाना प्रारंभ कर दिया था। कृतनगर पिता की मृत्यु के पश्चात 1268 ईस्वी में कृतनगर सिंहासरी के राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अंग्रोक राजस ने जिस वंश की स्थापना की थी, कृतनगर उसका सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा था। जावा जंगल और पंजलू का राज तो उसे अपने पिता से ही प्राप्त हो गया था, पर वह इतने से संतुष्ट नहीं रहा। समीप के अन्य द्वीपों पर आक्रमण कर उसने अपने राज का बहुत विस्तार किया और वह एक सुव्यवस्थित साम्राज्य के निर्माण में समर्थ हुआ। 1284 ईस्वी में उसने बाली द्वीप पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया गया और उसके राजा को कृतनगर के सम्मुख उपस्थित किया गया। बाली की विजय के पश्चात पहड़, मलाया प्रायद्वीप, मलयु, मध्य सुमात्रा में जाम्बी, गुरुंड, पूर्वी बोर्नियो में गोरोंग, बकुलपुर, दक्षिण पश्चिमी बोर्नियो, सुंडा, पश्चिमी जावा और मधुरा द्वीप को जीतने के लिए सेनाएं भेजी गई और इन सबको अपने अधीन कर सिंहासरी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कृतनगर की इन विजय यात्राओं का विवरण नागर कृतागम और परतोन ग्रंथों में विद्यमान है। यद्यपि उनके वृत्तांतों में कतिपय भेद भी है, पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कृतनगर एक दिग्विजय सम्राट था और उसने अपने राज का दूर दूर तक विस्तार किया था। साहित्यिक आधार पर कृतनगर की विजयों का जो परिचय मिलता है उसकी पुष्टि कतिपय अभिलेखों द्वारा भी होती है। सुमात्रा के बतनघरी जिले के पदंग रोको नामक स्थान पर एक अभिलेख मिला है जो 1286 ईस्वी का है। उससे सुमात्रा के इस प्रदेश का कृतनगर के अधीनस्थ होना प्रमाणित होता है। कृतनगर ने अमोघ पाशा की एक सुंदर मूर्ति को 4 अधिकारियों तथा 30 परिचारकों के साथ जावा से सुमात्रा भेजा था और धर्माश्रय में उसे प्रतिष्ठापित कराया था। जिस अभिलेख में इसका वर्णन है वह 1289 ईस्वी का है और एक भिक्षु वेशी मूर्ति के आधार आसन पर उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में चतुर्द्वीपेश्वर मुनि धर्मशास्त्रविद और जीर्णोद्वार क्रियाद्युक्त सदृश विशेषण इस राजा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। और उसका एक नाम श्री ज्ञान शिव व्रज भी लिखा गया है। अमोघ पाश की मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्य नादज्ञ नामक व्यक्ति द्वारा कराया गया था, जो कृतनगर के धर्माध्यक्ष पद पर नियुक्त था। एक अभिलेख में उसके ये विरुद्ध दिए गए हैं, श्री सकल जगन्नाथेश्वर सिंह मृत्यु निंद प्राकरम अशेष राजन चूड़ा मणि पित चरणान रविंद संत पित सुजन हृदयाम बंजा विरोधन स्वभाव। राजा कृतनगर केवल महान विजेता ही नहीं था, नागर कृतागम के अनुसार वह सारंग राजनीति में प्रवीण था और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसका आचार विचार भी शुद्ध था। 1289 ईस्वी के उसके अभिलेख में उसके व्यक्तित्व के विषय में जो विवरण दिया गया है वह उल्लेखनीय है। अशेष तत्व संपूर्णो धर्मशास्त्र विदाम्बर प्रज्ञार शिम विशुद्धारंग संबोधि ज्ञान पारंग। वह धर्मशास्त्र के वेताओं में श्रेष्ठ संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित तथा संबोधि ज्ञान में पारंगत था। पर परतोन में राजा कृतनगर का जो चित्र खींचा गया है वह इससे सर्वथा भिन्न है। वहां उसे एक मूर्ख तथा विलासी राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपना सब समय पंच मकारों के सेवन में व्यतीत किया करता था। वास्तविकता क्या थी यह निर्धारित कर सकना कठिन नहीं है। राजा कृतनगर की तंत्र यान वज्रयान में अगाध आस्था थी और वह इस संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित साधना का अनुष्ठान कर सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहता था। वज्रयानी बौद्धों के नामों के अंत में वज्र शब्द प्रयुक्त किया जाता था और उसी परंपरा का अनुसरण कर कृतनगर ने भी अपना एक नाम श्री ज्ञान शिव वज्र रख लिया था। वज्रयान की साधना में पंच मकार के सेवन का विशेष स्थान था और कृतनगर भी इनके सेवन में तत्पर रहता था। इसी को दृष्टि में रखकर परतोन में यदि उसे मूर्ख तथा विलासी कहा गया हो तो यह अस्वाभाविक नहीं है। राजा कृतनगर ने दूर दूर तक जो विजय यात्राएं की थी वे ही उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। इन विजयों के लिए सिंहासरी राज के प्राय सब सेनाएं अन्यत्र भेज दी गई थी। कटरी के शासक जय कतवंग ने इसी स्थिति से लाभ उठाया और सिंहासरी के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। कृतनगर ने विद्रोही जय कतवंग के विरुद्ध जो सेनाएं भेजी प्रारंभ में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई, पर अंत में जय कतवंग की विजय हुई। सिंहसारी पर उसने कब्जा कर लिया और कृतनगर को मौत के घाट उतार दिया। जय कतवंग के सिंहासरी पर आक्रमण के समय कृतनगर तंत्र साधना के लिए पंच मकार के सेवन में तत्पर था। इस प्रकार सिंहासरी को परास्त कर जय कतवंग द्वारा एक बार फिर कटरी के उत्कर्ष का श्री गणेश हुआ, पर शीघ्र ही जय कतवंग को एक नई विपत्ति का सामना करना पड़ा जिसके कारण वह अपने राज से हाथ धो बैठा। राजा कृतनगर ने जय कतवंग के विरुद्ध जो सेना भेजी थी उसका सेनापति विजय था, जो कृतनगर का दामाद था। सिंहासरी के जय कतवंग के हाथ में आ जाने पर विजय जावा को छोड़कर मदुरा द्वीप चला गया और वहाँ के शासक वीरराज, जो कृतनगर द्वारा वहाँ शासक के रूप में नियुक्त किया गया था, के साथ मिलकर ये योजना बनाई जिसका उद्देश्य जय कतवंग की शक्ति का अंत करना था। इस योजना के अनुसार विजय ने जय कतवंग के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और अपने प्रति उसका विश्वास उत्पन्न कर प्रति पड़ी भूमि का एक प्रदेश उससे जागीर के रूप में मांग लिया। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जाने लगी जिसका नाम मचपहित रखा गया। वहाँ बेल का एक वृक्ष था जिसका फल तीखा था, उसी से संस्कृत में इस बस्ती का नाम बिल्वतिक्त पड़ा और जावी भाषा में मचपहित। वीरराज के साथ मिलकर जो योजना विजय ने बनाई थी उसे क्रियान्वित करने का समय आने से पूर्व ही चीन के मंगोल सम्राट कुबेल खान ने जावा पर आक्रमण कर दिया। 1281 ईस्वी में जब कृतनगर जावा का राजा था, कुबेले खान ने अपना एक दूत मंडल इस प्रयोजन से सिंहासरी भेजा था ताकि कृतनगर को चीन के राज दरबार में आमंत्रित करे। 13वीं सदी में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। चीन से लगाकर रूस तक वे सब देश जिसके अंतर्गत थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के भी प्राय सभी राज्यों ने मंगोल सम्राट के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। कृतनगर को भी चीन इसीलिए बुलाया गया था ताकि वह स्वयं कुबले खां के राज दरबार में उपस्थित होकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करे, पर कृतनगर इसके लिए तैयार नहीं हुआ और कुबले खां के दूतों को टालता रहा। 89 ईस्वी में जब चीनी दूत फिर सिंहासरी पहुंचा तो कृतनगर ने उसे अपमानित कर वापस लौटा दिया। इस पर कुबले खान ने जावा के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया और 1292 ईस्वी में उसने फुकियान चीन का नेतम प्रांत के शासक को यह आज्ञा दी कि 20,000 सैनिकों के साथ जावा पर आक्रमण कर दिया जाए। जब तक यह चीनी सेना जावा पहुंची कृतनगर का पतन हो चुका था। 1292 ईस्वी और जय कतवंग ने काटरी को राजधानी बनाकर जावा के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया था। 1293 ईस्वी के प्रारंभ में कुबले खां की सेना पूर्वी जावा के तुबान बंदरगाह पर पहुंच गई। जय कतवंग ने उसका सामना करने की तैयारी की पर विजय जो मजपहित की अपनी जागीर में एक सामंत राजा के रूप में शासन कर रहा था ने चीनी सेना से सुलह कर लेने में ही अपना हित समझा। 14 कर्मचारियों के साथ अपने दीवान चीनी सेनापति के पास भेजकर उस मंगोल सम्राट का वशवर्ती होकर रहना स्वीकार कर लिया। जय कतवंग ने चीनी सेना के मार्ग को रोकने की बहुत बड़ी तैयारी की। 1,00,000 के लगभग सैनिक एकत्र किए। काडरी राज की राजधानी के समीप घनघोर युद्ध हुआ जिसमें हजारों सैनिक हताहत हुए। जय कतवंग कुबले खां की सेना के सम्मुख नहीं टिक सका, वह परास्त हो गया और अपने पुत्र कलत्र के साथ उसने मंगोल सेनापति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। चीनी सेनापति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिस प्रयोजन से कुबले खान ने अपनी सेना जावा भेजी थी वह पूरा हो चुका था। मंगोल सम्राट के आदेश को स्वीकार न कर कृतनगर ने जो दंडता का प्रदर्शित की थी उसका बदला उसके बाद के राजा जय कतवंग से ले लिया गया था। इस दशा में चीनी सेनापति ने अपने देश वापस लौट जाने का निश्चय किया और जावा को अपने भाग पर छोड़कर चीन की सेना वहां से प्रस्थान कर गई। कुबले खां की सेना आई तो थी कृतनगर में दंड देने के लिए पर उसने उसके शत्रु जय कतवंग की शक्ति का अंत कर कृतनगर के वंशजों के लिए मार्ग निष्कंटक कर दिया। चीनी आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि मजपहित के सामंत राजा विजय को अपने उत्कर्ष का अवसर प्राप्त हो गया। पांचवा मजपहित बिल व तिकत के साम्राज्य का उत्कर्ष काल 1292 से 1389 तक। कृतराजस जय कतवंग की पराजय तथा वध के पश्चात विजय का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह गया था। वह कृतनगर का दामाद था और अपने को जावा के राज्य का अधिकारी मानता था। अब वह कृतराजस जयवर्धन के नाम से जावा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ पर उसने काडेरी और सिंहासरी के बजाय मजपहित को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण उस द्वारा जिस नए राज एवं राजवंश की स्थापना हुई वह मजपहित के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि वस्तुतः विजय द्वारा सिंहासरी के उसी राज्य को जारी रखा गया जिसके प्रवर्तक अंगरोक राजस द्वारा किया गया था। कृतनगर के कोई पुत्र नहीं था, उसकी केवल 4 लड़कियां थी और उन चारों का विवाह विजय के साथ हुआ था। इस प्रकार विजय ही कृतनगर का उत्तराधिकारी था। उसकी 4 रानियों में से केवल एक की संतान हुई। इस रानी का नाम गायत्री राजपत्नी था और इसने 2 पुत्रियों को जन्म दिया था। कृतराजस ने एक अन्य स्त्री से भी विवाह किया था जो मलयू की राजकुमारी थी। इसका नाम इंद्रेश्वरी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम जयनगर रखा गया था। कृतराजस ने अपने जीवन काल में ही उसे काडरी का राजकुमार बना दिया था। काडरी चिरकाल तक जावा की राजधानी रही थी और वहाँ उसका विशेष महत्व था। ग्रेट ब्रिटेन में जिस प्रकार राज सिंहासन के उत्तराधिकारी को प्रिंस ऑफ वेल्स बना दिया जाता है, संभवतः वैसे ही जावा में जयनगर को काडरी का प्रिंस बना दिया गया। राजा विजय कृतराजस जयवर्धन के शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। उसने चीर संघर्ष के पश्चात राज सिंहासन प्राप्त किया था और उसका शेष जीवन भी संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। मदुरा द्वीप के जिस शासक वीरराज के साथ मिलकर उसने जय कतवंग के विरुद्ध योजना बनाई थी उसे शासन में उच्च पद प्रदान किया गया और कृतराजस ने उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। इस प्रकार मजपहित के राज्य की स्थापना कर 1309 ईस्वी में कृतराजस ने अपनी यह लीला समाप्त की। जयनगर कृतराजस के बाद उसका पुत्र जयनगर मजपहित के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसकी आयु बहुत कम थी और राज्यकार का उसे कोई भी अनुभव नहीं था, इसीलिए उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। कृतराजस ने घोर संघर्ष के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया था और इस संघर्ष के समय जिन लोगों ने उसका साथ दिया था वे उससे बहुत सी ऐसी आशाएं रखते थे जिन्हें पूरा कर सकना सुगम नहीं था। जब तक कृतराजस जीवित रहा उसके प्रतापी व्यक्तित्व के कारण उसका असंतोष दबा रहा, पर उसकी मृत्यु के पश्चात उनका असंतोष विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। पहला विद्रोह 1309 ईस्वी में हुआ। इसका नेता रंग लवे नामक एक राज कर्मचारी था जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने की आकांक्षा रखता था। उसके विद्रोह ने अच्छा गंभीर रूप धारण कर लिया, पर अंत में जयनगर उसका समन करने में समर्थ हो गया। बाद में अन्य भी अनेक राज पदाधिकारियों ने विद्रोह किए, जिनमें नाम्बी का विद्रोह उल्लेखनीय है। नाम्बी राजा कृतराजस के प्रधान सहयोगी वीरराज का पुत्र था। लंबह नामक स्थान को केंद्र बनाकर उसने एक सेना संगठित की और जयनगर के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, पर वह भी जयनगर के सम्मुख नहीं टिक सका और राजकीय सेना द्वारा उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया गया। 1316 पर जयनगर के भाग्य में शांतिपूर्वक राज करना नहीं लिखा था। उसके सात प्रधान राज पदाधिकारियों जिन्हें धर्मपुत्र कहा जाता था में एक कुटी थी। अब उसने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और उसके विद्रोह ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया कि राजा जयनगर को मजपहित छोड़कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। इस अवसर पर केवल गजहमद नामक विश्वस्त मंत्री और 15 अंगरक्षक ही उसके साथ थे। गजहमद अत्यंत चतुर पुरुष था। संकट के इस अवसर पर उसने कूटनीति से काम लिया और कुटी का घात करा के जयनगर को फिर राजगद्दी प्राप्त कराई। अपनी योग्यता और राजभक्ति के कारण गजहमद ने बहुत उन्नति की और शीघ्र ही वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो गया 1321 ईस्वी में। पर कुटी के घात के बाद भी जयनगर शांतिपूर्वक जीवन नहीं बिता सका। उसके विरुद्ध होते रहे, विद्रोह होते रहे और अनेक उच्च राज पदाधिकारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्रों में तत्पर रहे। मजपहित के राजवैद्य तंच द्वारा 1329 में उसकी हत्या करा दी गई। बालीद्वीप की एक अनुश्रुति के अनुसार जयनगर ने अपने प्रधानमंत्री गजहमद की पत्नी के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण वह उसके विरुद्ध हो गया था और उसी ने राजवैद्य तंच को अपने साथ मिलाकर जयनगर की हत्या करा दी थी 1329 में। जयनगर का अपना जीवन चाहे कैसा ही अशांतिपूर्ण रहा हो, पर इसमें संदेह नहीं कि इस काल में जावा का मजपहित राज अत्यंत शक्तिशाली था। 1323 ईस्वी में उत्कीर्ण एक अभिलेख सूचित होता है कि न केवल संपूर्ण जावा पर जयनगर का शासन था अपितु मदुरा द्वीप तथा तंजुपुर बोर्नियो भी उसके अधीन थे। ओडोरिक वान पोर्डनन नामक एक यात्री ने 1321 में दक्षिण पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र में यात्रा की थी। उसने लिखा है कि सात अन्य राजा जावा के राजा की अधीनता स्वीकार करते थे। वहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और वहाँ मसाले प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होते थे। जावा का राजप्रसाद सुवर्ण, रजत और मणि माणिक्य से विभूषित था। इस काल में चीन के साथ भी जावा का संबंध था और 1322, 1323, 1325 और 1327 में जावा द्वारा अपने दूत मंडल चीन के सम्राट की सेवा में भेजे गए। जो दूत मंडल 1327 में चीन गया था, चीनी सम्राट ने उस द्वारा बहुत से उपहार जावा के राजा चै नको नई के लिए भेजे थे। चै नको नई जयनगर का ही चीनी रूपांतरण है। 1323 ईस्वी के एक अभिलेख में जयनगर के लिए श्री सुंदर पांडे देवाधीश्वर नाम राजाभिषेक विक्रमोत्तुंग देव विरुद्ध का प्रयोग किया गया। इस राजा की राजमुद्राओं पर मीन दय दो मछलियां अंकित हैं। भारत के पांडे राजा भी मीन को राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया करते थे। जयनगर का मीन दय को राजमुद्रा में अंकित कराना और अपने विरुद्ध में पांडे देवाधीश्वर प्रयुक्त करना यह संकेत करता है कि इस काल में जावा और पांडे देश में घनिष्ठ संपर्क था। राजपत्नी गायत्री। राजा जयनगर की कोई संतान नहीं थी। इस दशा में राजपत्नी गायत्री को मजपहित राज्य की स्वामिनी घोषित किया गया। गायत्री सिंहासनी राज्य की अंतिम राजा कृतनगर की पुत्री तथा मजपहित राज्य के संस्थापक कृतराजस की अन्यतम पत्नी थी। जयनगर की वह विमाता थी। राज्य पर उसी का अधिकार स्वीकार किया गया, पर क्योंकि उसने बौद्ध भिक्षुणी का व्रत ग्रहण कर लिया था अतः उसकी ज्येष्ठ कन्या जयनगर की सौतेली बहन त्रिभुना वतुंग देवी जय विष्णु वर्धिनी, जिसका व्यक्तिगत नाम गीताजा या गीतारिया था, ने अपनी माता के स्थान पन रूप से शासन सूत्र का संचालन करना प्रारंभ किया। जयनगर की मृत्यु से कुछ समय पूर्व गीतारिया का चक्र धरिया चक्रेश्वर नामक क्षत्रिय कुमार से विवाह हुआ था और राजकुल के साथ संबंध हो जाने पर इस कुमार को कृतवर्धन उपाधि धारण तथा प्रदान की गई। मतवहित के विरुद्ध विद्रोहों की जो प्रक्रिया जयनगर के समय जारी थी अब भी उसका अंत नहीं हो गया था। 1331 में संदेग और केता में विद्रोह हुए जिन्हें गजहमत द्वारा शांत करा दिया गया। जयनगर के समय में भी गजहमत का शासन में प्रधान स्थान था। राजपत्नी गायत्री के शासनकाल में उसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया और वह वास्तविक रूप से राज का कर्ता धर्ता बन गया। समीप के द्वीपों पर आक्रमण कर उसने जावा के मतपहित राज्य का बहुत उत्कर्ष किया। बाली पर पहले भी जावा का आधिपत्य विद्यमान था पर 1343 ईस्वी में एक सेना फिर उस पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई और इस द्वीप पर मतपहित का सुदृढ़ प्रभुत्व स्थापित किया गया। पर रतोन में अनेक ऐसे राज्यों व प्रदेशों के नाम दिए गए हैं जिन्हें गजहमद द्वारा विजय किया गया था। इनमें पहंग मलाया में, तंजुंगपुर बोर्नियो में, सुंडा पश्चिमी जावा में और प्लेमबंग सुमात्रा में भी है। इनमें से कुछ पहले भी जावा के अधीन थे। संभवतः गजहमद ने पुनः आक्रमण कर उन पर जावा के आधिपत्य को अधिक सुदृढ़ रूप से स्थापित किया था। चीन के साथ इस समय में भी जावा के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 1332 ईस्वी में एक दूतमंडल जावा से चीन गया था जिसके सदस्यों की संख्या 83 थी। राजपत्नी गायत्री की मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई। राजस नगर राजपत्नी गायत्री की ज्येष्ठ कन्या त्रिभुवनो तुंग देवी जय विष्णु वर्धिनी गीतारिया का विवाह चक्रधर नामक क्षत्रिय से हुआ था। यह ऊपर लिखा जा चुका है। उनके पुत्र का नाम हयंग बुरुक था। अपनी नानी की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में वह राजस नगर के नाम से मजपहित के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। जावा के इतिहास में इस राजा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके शासनकाल में मजपहित का बहुत उत्कर्ष हुआ और जावा का साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया। राजस नगर एक अत्यंत साहसी उद्दंड व महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1357 में उसका सुंडा की राजकुमारी के साथ विवाह होना तय हुआ। सुंडा एक पृथक राज्य था जिसके महाराज मजपहित के सम्राटों को अपना अधिपति स्वीकार करते थे। राजस नगर की इच्छा थी कि वह विवाह के अवसर पर भी सुंडा का महाराज उसके प्रति ऐसा बर्ताव करे जैसा कि सामंत राजा अपने अधिपति के साथ किया करते थे। पर सुंडा का राजकुल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर मजपहित की सेनाओं ने सुंडा पर आक्रमण कर दिया जहां उनका सामना मुकाबला किया गया। सुंडा के लोगों ने अपमानपूर्वक जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु पसंद की और वहां का राजकुल राजस नगर के कोप का शिकार हो गया। सुंडा की राजकुमारी भी इस युद्ध में मारी गई। सुंडा के प्रति व्यवहार करते हुए राजस नगर ने जिस उद्दंड प्रकृति का परिचय दिया था उसी का उपयोग कर उसने पड़ोस के अन्य राज्यों पर आक्रमण प्रारंभ किया और उन्हें जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। सुंडा के राजकुल को परास्त करने के पश्चात दोम्बो द्वीप पर आक्रमण किया गया और उसे जीत लिया गया। उसके बाद उसने जो दिग्विजय प्रारंभ की उसके कारण प्रायः वे स्वद्वीप व प्रदेश उसकी अधीनता में आ गए जो वर्तमान समय में मलेशिया और इंडोनेशिया के राज्यों के अंतर्गत हैं। इसी राजा के शासनकाल में सन 1365 में नागर कृतागम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसमें उन सब प्रदेशों व राज्यों का उल्लेख है जो राजस नगर की अधीनता में थे। नागर कृतागम की सूची के अनुसार ये प्रदेश निम्नलिखित थे। पहला सुमात्रा में जाम्बू पलमबंग करीतंग इंद्रगिरी से दक्षिण तेब जाम्बी के समीप धर्माश्रय कंडिस कावस मणंग कम्बवा रकान सियक काम्पर पने काम्पे हारू तमी हिंग मंड हिलिंग पलकी बरत लवस समुद्र लमुरी बतन लामपुंग और बरुस। दूसरा बोर्नियो में कपूहस कतिंगान संपत्ति कुटवलिंग सम्बस लवई कंड डडंगन लंदक समंडड तिरम सेडू बुरुनण बुनेई कल्क सलुडुड सुलु परिसरे बरितु सवकु तबलुंग तुयजुड़ मलनो तंजुंग पुरी और कुटवारिंगन। तीसरा मलाया प्रायद्वीप में हुजुड़ू मेदिनी जहोर लंका शुक सई कलेंतन त्रिगणों नसोर पका मुवर दुंडुंग तुमसिक सिंगापुर सैंग हुजूड़ केलंग केड्डा कंजय जरे और निरान। चौथा जावा के पूर्व में स्थित द्वीप वाली, गुरुण, सुम्बवा, दीप में तालिवंग, दोम्पो, सपी और भीम, सड़ेयांग, अपि, सेड़ांग, हुतन, कडली, लोम्बोक, मीरा, साक्षक, बांतयान, लुहुक, उडम, कंत्रय, मकसर, बुतुन, बड़ंगवी, कुनी, गलियाओ, सलय, सुम्बा, सोलोत, मुअर, वंडन, अम्बवन, मलोको, बवानीन, सेरन और तिमूर। सुमात्रा, बोर्नियो और मलाया प्रायद्वीप के जिन प्रदेशों के नाम इन सूची में दिए गए हैं, वे सब पहले छोटे छोटे राज्यों के रूप में रह चुके थे। राजसनगर ने उन सबको जीतकर अपने अधीन कर लिया था या उनके राजाओं को अपने वशवर्ती बना लिया था। जावा से पूर्व में स्थित जिन द्वीपों के नाम इन सूची में हैं, उन सब पर भी वह अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हो गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में फिलीपीन ही एक ऐसा द्वीप समूह रह गया था जो राजसनगर के समय में मत्स्यपाहित साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नागर कृतागम का रचयिता राजसनगर का आश्रित कवि था, अतः यह संभव नहीं है कि उसके कुछ अतिशयोक्ति से काम लिया हो, पर उसके विवरण में संदेह करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कतिपय ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं जिनसे बाली, बोर्नियो आदि अनेक प्रदेशों व द्वीपों पर राजसनगर के प्रभुत्व की बात पुष्ट होती है। बतूर, बाली से 1348 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है जिसे राजसनगर के मामा श्री विजय राजस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इसी प्रकार 1398 के एक अन्य अभिलेख में भी विजय राज का श्री परमेश्वर नाम से उल्लेख है। इसमें संदेह नहीं कि बाली द्वीप मत्स्यपाहित साम्राज्य के अंतर्गत था और राजसनगर की ओर से श्री विजय राजस वहां शासन के लिए नियुक्त था। सिंगापुर और सुमात्रा द्वीपों में भी ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें इन प्रदेशों पर जावा के आधिपत्य के संकेत विद्यमान हैं। इस काल के चीनी ग्रंथों में स्पष्ट रूप से पुन्नी बोर्नियो का पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश पर जावा के प्रभुत्व का वर्णन है। साथ ही उनमें यह भी लिखा गया है कि सान फोस्सी पर भी जावा का आधिपत्य विद्यमान था। जब सान फोस्सी के राजा की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र का यह साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं अपने अधिकार से उसके राजसिंहासन पर आरूढ़ हो सके। चीन के सम्राट ने राज प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए, पर जावा द्वारा उन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया जो सान फोस्सी के राजकुमार की सहायता के लिए चीन से आए थे। यह स्वीकार करना होगा कि राजसनगर एक अत्यंत प्रतापी सम्राट था और उसका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी एशिया में दूर दूर तक विस्तृत था। पड़ोस के जिन राज्यों के साथ उसका मैत्री संबंध था उनके नाम भी नागर कृतागम में दिए गए हैं। ये राज्य निम्नलिखित थे: सियाम, धर्मनगरी, लिगोर, मर्तवान, राजपुर, सिहन नगरी, चंपा, काम्बोज और यवन, उत्तरी अमराम। इनके अतिरिक्त नागर कृतागम में उन राज्यों के भी नाम दिए गए हैं जिनके व्यापारी, ब्राह्मण और श्रमण जावा आते जाते रहते थे। वहां लिखा है कि जम्बूद्वीप, कंबोज, चीन, यवन, चंपा, कर्नाटक, गौड़ और सियाम के व्यापारी निरंतर जावा आते रहते हैं। वे पढ़ने को साथ लेकर जहाजों द्वारा वहां आते हैं। ब्राह्मण और श्रमण भी इन देशों से वहां आया करते हैं और वहां उनका समुचित सम्मान किया जाता है। भारत के साथ मत्स्यपाहित साम्राज्य का घनिष्ठ संबंध था। जम्बूद्वीप से भारत ही अभिप्रेत है और कर्नाटक तथा गौड़ बंगाल का पृथक रूप से उल्लेख यह सूचित करता है कि इन प्रदेशों को व्यापारी विशेष रूप से जावा आया जाया करते थे। नागर कृतागम के एक श्लोक में यह भी कहा गया है कि जावा और जम्बूद्वीप संसार के दो सबसे सुंदर देश हैं। इन दोनों देशों में घनिष्ठ संबंध की सत्ता इस बात से प्रमाणित होती है कि कांची, कांजीवरम के भिक्षु बुद्धादित्य तथा ब्राह्मण मुतली सहृदय ने जावा के राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी। राजसनगर के शासनकाल में मत्स्यपाहित राज्य का जो असाधारण कर्ष हुआ उसका प्रधान श्रेय गजहमत को दिया जाना चाहिए। यह उसी की योग्यता का परिणाम था कि जावा एक सुव्यवस्थित और सुशासित राज्य बन गया और एक विशाल साम्राज्य के निर्माण में समर्थ हुआ। 1364 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया गया। शासन कार्य के संचालन के लिए अब एक परिषद नियुक्त की गई जिसके सदस्य राजा, उसके माता पिता, चाचा चाची, दो बहनें और उनके पति थे। इन्हें भट्टार सप्त प्रभु कहा जाता था, पर यह व्यवस्था देर तक नहीं चल सकी। 1371 ईस्वी में गजह एंगोम को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और वह मृत्यु 1398 तक इस पद पर रहा। 1389 में राजसनगर की मृत्यु हुई और उसके पश्चात मत्स्यपाहित साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। छठा, मत्स्यपाहित साम्राज्य का पतन। विक्रमवर्धन, राजसनगर की मृत्यु के पश्चात मजपही साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसका कारण वह गृह कलह था, जिसके कारण राजसनगर स्वयं उत्तरदायी था। राजसनगर की पटरानी का नाम परमेश्वरी था, जिसकी एकमात्र संतान कुसुम वर्धनी नामक एक कन्या थी। इस पटरानी परमेश्वरी की छोटी बहन ईश्वरी थी, जिसकी दो संतानें थी, एक लड़की नागरवर्धनी और एक लड़का विक्रमवर्धन। इस विक्रमवर्धन का विवाह राजसनगर की पुत्री कुसुम वर्धनी के साथ हुआ था, जिसके कारण राजसिंहासन का यही उत्तराधिकारी था। पर राजसनगर की एक अन्य रानी ने उसे एक पुत्री की भी प्राप्ति हो गई थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसका विवाह उसने नागरवर्धनी के साथ करा दिया था और उसे पूर्वी जावा का शासक नियुक्त कर दिया था। राजा का पुत्र होने के कारण वह वहां स्वतंत्र रूप से आचरण करने लगा था और अपने पिता के जीवन काल में ही उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। राजसनगर का यह पुत्र वीरभूमि के कुमार के नाम से प्रसिद्ध है। 1389 में राजसनगर की मृत्यु हो जाने पर जब विक्रमवर्धन मजपहित के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो वीरभूमि उसका प्रतिद्वंद्वी बन गया और उन दोनों में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध का अंत 1406 ईस्वी में हुआ, जब वीरभूमि की हार हो गई और उसके सिर को काटकर मजपहित के राज दरबार में उपस्थित कर दिया गया। यद्यपि वीरभूमि की मृत्यु के पश्चात जावा के राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी, पर सुदीर्घ गृह युद्ध के कारण मजपहित में अब इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि साम्राज्य के अंतर्गत अन्य प्रदेशों व द्वीपों पर अपना आधिपत्य रख सके। चीनी ग्रंथों से सूचित होता है कि 15वीं सदी के पूर्वार्ध में बोर्नियो सुमात्रा आदि से मजपहित के प्रभुत्व का अंत हो गया था और इन द्वीपों के राज्यों ने चीन को अपना अधिपति एवं संरक्षक मानना प्रारंभ कर दिया था। जबकि 1370 में यह दशा थी कि जावा के भय के कारण पूनी पश्चिमी बोर्नियो के राजा को अपना दूतमंडल तक चीन भेजने का साहस नहीं हुआ था। 1405 में वहां का राजा सपरिवार चीन गया और वहां के सम्राट के प्रति उसने सम्मान निवेदन किया था। इस प्रकार सान फोस्सी श्रीविजय सदृश अन्य राज्य भी अब मजपहित की अपेक्षा कर चीन के साथ उसने संबंध स्थापित करने और उसके अपना संरक्षक मानने को तत्पर हो गए थे। जावा ने न केवल इसे सहन ही किया अपितु स्वयं भी वह चीन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने लगा। 1415 से 1418 और 1432 में जावा से अनेक दूतमंडल भेंट उपहार के साथ चीन भेजे गए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि 15वीं सदी के प्रारंभ काल में मलाया प्रायद्वीप में इस्लाम का जोर बहुत बढ़ गया था और वहां से कतिपय स्थानीय राज्यों के शासक मुसलमान बन गए थे। मजपहित की शक्ति के छीन होने के पर इन मुस्लिम शासकों जो सुल्तान कहते थे ने भी सिर उठाना शुरू किया और जावा के लिए वे एक नई विपत्ति बन गए। मलाया क्षेत्र के मुस्लिम सुल्तानों में मलक्का का सुल्तान सबसे शक्तिशाली था और चीन का संरक्षण प्राप्त कर वह अपने राज के विस्तार में तत्पर था। मलक्का से अपने राज की रक्षा करने के लिए ही जावा के राजा विक्रमवर्धन ने यह आवश्यक समझा कि वह भी चीनी सम्राट की सेवा में भेंट उपहार भेजकर उसकी सद्भावना तथा संरक्षण प्राप्त कर ले। विक्रमवर्धन के उत्तराधिकारी 1429 ईस्वी में राजा विक्रमवर्धन की मृत्यु हो गई। उसकी तीन संतानें थीं, एक पुत्री और दो पुत्र। पटरानी की संतान पुत्री थी, जिसका नाम सुहिता था। अब वह मजपहित के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुई और 1446 तक उसने जावा का शासन किया। सुहिता के कोई संतान नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई भृतुम्पल श्री कृतविजय की उपाधि के साथ मजपहित का राजा बना। उसका शासनकाल केवल 4 वर्ष 1447 से 51 का था। श्री कृतविजय के बाद जो राजा मजपहित के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए वे राजसवर्धन 1451 से 56, भाड़ पूर्व विशेष 1456 से 66 और सिंह विक्रमवर्धन 1466 से 78 थे। इनके शासनकाल की कोई विशेष घटनाएं ज्ञात नहीं है, पर इनका बहुत कम समय तक शासन करना यह सूचित करता है कि इनके समय में जावा में शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। सिंह विक्रमवर्धन मजपहित के उस राजवंश का अंतिम राजा था जिसकी स्थापना कृत राजस द्वारा की गई थी। इस राजवंश के शासन का अंत दाहा कडरी के राजा भट्टार प्रभु गिरेंद्रवर्धन रणविजय द्वारा किया गया। दाहा या कडरी के राज्य तथा राजवंश का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसी की शक्ति का अंत कर सिंहासरी राज की स्थापना हुई थी, जो जावा में मजपहित का पूर्ववर्ती राज्य था। कडीरी के इस वंश के व्यक्ति स्थानीय शासकों या सामंत राजाओं की स्थिति के बाद में भी विद्यमान थे। और ऐसे ही सामंत राजा गिरिंदवर्धन रणविजय में मजपहित के राजवंश का अंत कर अपने को जावा का राजा बना लिया। एक अभिलेख में उसे विलवक्तिक मजपहित दाहा जांगल और काडरी का राजा कहा गया है और इस बात का उल्लेख है चतुर्वेद पारंगत ब्रह्मराज गंगाधर ने उसके पिता का द्वश वार्षिक श्राद्ध कराया था। उसके अभिलेख से यह भी सूचित होता है कि उस द्वारा राम और ऋषि भारद्वाज की मूर्तियों की स्थापना और राम विष्णु यम तथा दुर्गा की पूजा की व्यवस्था कराई गई थी। गिरेंद्रवर्धन रणविजय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 15वीं सदी के अंत तक भी जावा में हिंदू राजाओं का शासन था और वहां की जनता भी प्रधानतया हिंदू धर्म की ही थी। पर इस काल में दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में इस्लाम का प्रसार बड़ी तेजी के साथ हो रहा था और जावा के विविध सामंत राजकुलों के अनेक व्यक्तियों ने भी इस धर्म को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। यह स्वाभाविक था कि ये नए मुसलमान बने राजकुलों के व्यक्ति मजपहित व दाहा आदि के हिंदू राजकुलों के प्रति विरोध भाव रखें और उनसे संघर्ष कर अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करें। 16वीं सदी के शुरू में जावा की राजनीतिक दशा पर पुर्तुगीज रेद ब्रितो के इस कथन 1514 से अच्छा प्रकाश पड़ता है। जावा एक बड़ा द्वीप है, वहाँ दो काफिर राजा हैं, एक जावा का और दूसरा सुंडा का। समुद्र तट मुसलमानों के अधीन है जो बड़े बलशाली हैं। बड़े अमीर और व्यापारी अपने को इन स्थानों का सुल्तान कहते हैं। वे बहुत धनी हैं और उनके पास बहुत से जहाज हैं। समुद्र तट के इन मुसलमानों द्वारा जावा में इस्लाम का जो प्रसार हो रहा था जिसके कारण वहां के राजकुल के व्यक्ति भी मुसलमान बनने लग गए थे, उसी का यह परिणाम हुआ कि 16वीं सदी के मध्य तक जावा मुख्यतया मुसलमानों के हाथों में चला गया। यद्यपि बाद में भी कुछ हिंदू राज्य वहाँ शेष रह गए थे। इनमें एक बलमबडन का राज था जहाँ 1600 ईस्वी में भी हिंदू राजा का शासन था। पर ऐसे एक दो अपवादों को छोड़कर जावा में सर्वत्र मुसलमान सुल्तान राज करने लगे थे और उनके शासन में वहाँ से न केवल हिंदू संस्कृति का अंत हुआ अपितु वहाँ के बहुत से पुराने मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार जावा से भारतीयों या हिंदुओं के उस सांस्कृतिक साम्राज्य का अंत हुआ जो 15 वर्ष के लगभग तक वहाँ कायम रहा था। 7वां, इंडोनेशिया के अन्य हिंदू राज। सुमात्रा के शैलेंद्र राजा और जावा के मजपहित राजा मलाएशिया तथा इंडोनेशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे। यह ऊपर लिखा जा चुका है पर इस क्षेत्र में अन्य भी अनेक हिंदू राज्य विद्यमान थे जिन्हें यद्यपि शैलेंद्र तथा मजपहित सम्राट अपनी अधीनता में ले आने में समर्थ हुए पर जो अवसर पाते ही फिर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते थे। ऐसा एक राज्य सुंडा का था जिसकी स्थिति पश्चिमी जावा में थी। इस राज्य के अनेक अभिलेख मिले हैं जिनसे वहां के हिंदू राजाओं का वृत्तांत ज्ञात होता है। ऐसा ही एक राज्य मलयू जाम्बी था जो सुमात्रा के पूर्वी तट पर स्थित था। शैलेंद्र राजाओं की शक्ति के क्षीण होने पर इस राज्य ने अच्छी उन्नति कर ली थी, यद्यपि बाद में वह मजपहित सम्राटों के आधिपत्य में आ गया था। शैलेंद्र साम्राज्य के पतन के समय सुमात्रा में अन्य भी अनेक हिंदू राज्य स्थापित हो गए थे जिन्होंने बाद में मजपहित सम्राटों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 14वीं सदी में सुमात्रा में भी इस्लाम का प्रवेश शुरू हुआ और धीरे धीरे न केवल वहां की राजसत्ता ही मुसलमानों के हाथों में चली गई अपितु वहां के निवासियों ने भी इस्लाम को अपना लिया। जावा के समीप पूर्व की ओर स्थिति बाली द्वीप में भी एक समृद्ध हिंदू राज्य की सत्ता थी। बाली में सबसे पुराना ताम्रपत्र 896 ईस्वी का मिला है और 915 ईस्वी के वहां से प्राप्त हुए अभिलेख से सूचित होता है कि उस समय वहां उग्रसेन नाम के राजा का शासन था। उग्रसेन 915 से 33 के बाद वहां क्रमशः राजा तबेनेंद्र वर्मदेव और चंद्रा भय सिंह वर्मदेव ने शासन किया। 975 में वहां का शासन राजा जना साधु वर्मदेव के हाथों में था और 983 में रानी श्री विजय देवी के। बाली के इस हिंदू राज्य को पहले रावा के राजा धर्मवंश ने जीता और फिर राजा कृतनगर ने। कृतनगर के बाद आदि सदी के लगभग तक बाली स्वतंत्र रहा पर बाद में मजपहित राजाओं ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब जावा का मजपहित राजा मुसलमानों के सम्मुख नहीं टिक सका और अपने धर्म पर दृढ़ रहने का कोई अन्य उपाय वहाँ के हिंदुओं को नहीं सूझा तो वे जावा को छोड़कर बाली चले गए। इस प्रकार बाली हिंदू शरणार्थियों का कैंप बन गया और जावा की प्राचीन हिंदू संस्कृति बाली में केंद्रभूत हो गई। बाली मुसलमानों के हाथ में ना ही आ सका। और वहाँ के निवासी अब भी हिंदू हैं, और वहाँ स्वर्णद्वीप मलेशिया और इंडोनेशिया की प्राचीन भारतीय व हिंदू संस्कृति की धारा इस समय तक भी प्रवाहित हो रही है। बाली के बहुत से लोग अपने को वोंग मचपहित जन कहकर गर्व अनुभव करते हैं। मचपहित के एक राजकुमार ने बाली के उस हिंदू राजवंश का सूत्रपात किया था जो 19वीं सदी के प्रथम चरण तक वहाँ शासन करता रहा। 1839 में वहाँ के राजा ने डच आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था और हॉलैंड के वशवर्ती रूप में बाली के हिंदू राज की स्थिति 1911 ईस्वी तक कायम रही, जब तक कि उसकी पृथक सत्ता का अंत कर उसे डच साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य सब हिंदू राज्यों का अंत भी इस्लाम के प्रसार के कारण हुआ। इन सब का वृतांत इस ग्रंथ में लिख सकना कठिन है।